ان مہان جن چلے ہمارے جھان منگل مے منگل کرن بیت راگ وگیان نمو تا ہی جاتے بھئے ارہنتا دیوان۔
موکش مارگ پرکاشک کے چوتھے ادھیائے کے آدھار پر آشرو تتو کے سندرم میں انادی کالین بھول کس پرکار کی ہے اس کی چرچا یہاں پر چل رہی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں جی گریت اور اگریت کے بارے میں وچار کریں گے۔ تو گریت ہم یہ مانیں گے کہ جو استھول گریت متھیاتو ہے نا، یہ جو ہمیں منسیہ گتی میں کگرو کدیو کشاستر کے نمت سے ہوتا ہے، وہ جو ان کے نمت سے راگ میں دھرم ماننے کی ہماری بدھی ہے وہ گریت متھیاتو میں جائے گا، کیونکہ ان دھرموں میں جو ویتراگی دھرم نہیں ہے راگ کو ہی سب سے بڑا دھرم مانا گیا ہے۔ اور راگ شبد میں بار بار بول رہا ہوں لیکن اور ذرا اسپشٹ کروں نا، تو بھکتی کو ہی سب سے بڑا دھرم مانا ہے، مکتی کا کارن مانا اور بھکتی راگ ہے۔ بس تم تو بھگوان کی شرن میں چلے جاؤ اور بھگوان کی بھکتی کرو، بھگوان کو سمرپت ہو جاؤ، بھگوان تمہارا کلیان کر دیں گے، تو یہ راگ میں دھرم ماننا ہوا نا۔ اور اپن تو یہ کہتے بھگوان سے بھی راگ توڑو، گیت راگی بنو تو تمہیں دھرم ہوگا، تو یہ تو گریت میں جائے گا۔ اور اگریت میں کیا ہے کہ آتما میں گیان اور راگ دونوں چیزیں ہیں۔ راگ ہے آسرب بھاو ہے نا، اور گیان ہے بیت راگ بھاو نراسرب بھاو، ان دونوں بھاووں میں ایک سا اپناپن استھاپت کرتا ہے، یہ آسر تتو سمبندی بھول ہے۔ دیکھو پڑھتے ہیں اپن، تتھا اس جیو کو موہ کے ادے سے متھیاتو کسایادی بھاو ہوتے ہیں، ان کو اپنا سوبھاو مانتا ہے، کرموپادی سے ہوئے نہیں جانتا، درشن گیان اپیوگ اور یہ آسرب بھاو ان کو ایک مانتا ہے، کیونکہ ان کا آدھار بھوت تو ایک آتما ہے اور ان کا پرنمن ایک ہی کال میں ہوتا ہے، اس لیے اسے بھنتا بھنپنا بھاست نہیں ہوتا، اور بھنپنا بھاست ہونے کا کارن جو وچار ہے سو متھیا درشن کے جور سے ہو نہیں سکتا۔ وہ بات آ گئی نا پنکتی دوارا آ گئی کہ متھیا درشن کے جور سے ہو نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آتما میں راگ بھی پیدا ہوتا ہے اور گیان بھی پیدا ہوتا ہے، اور دونوں ایک کال میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے بار بار کہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہوتے، دو کام ایک ساتھ نہیں ہوتے، دو کام نہیں، ہر درب میں انت کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ جتنے گن ہیں ان پرتیک گن میں پرنمن ہوتا ہے، تو گیان گن کا جاننا کاری ہے وہ پرتی سمے ہوتا کہ نہیں، درشن گن کا دیکھنا کاری ہے وہ پرتی سمے ہوتا کہ نہیں، ویر گن کا جو شکتی روپ کاری ہے وہ پرتی سمے ہے کہ نہیں، سکھ گن کا جو سکھ یا دکھ روپ پرنمن کار ہے وہ پرتی سمے ہے کہ نہیں۔ تو جتنے گن ہیں ان سب کی ایک ایک پریائے پرتی سمے موجود ہے، اور پرتیک پریائے کا نام کاری ہے نا۔ اب ہم بولیں گے کہ وہ آتما کا جو پرنمن ہے ایک گیان گنادی گنوں کا، تو اس گن کا کرتا، اس پرنمن کا کرتا کون؟ تو اپن گن کی اپیکشا بات کریں گے تو کہیں گے متی گیان کا کرتا گیان گن، اپادان کی اپیکشا نمت کی بات تو نہیں نا، تو ایسے انت گنوں کے انت کرتا ہو جائیں گے۔ لیکن سوال تو آتما کا ہے، تو ہم گیان کا کرتا بھی آتما کو کہیں گے، شردھا کا کرتا بھی آتما کو کہیں گے، اور ہر گن کے پرنمن کا کرتا آتما کو کہیں گے نا۔ تو یہ آتما ایک ہوا کرتا اور انت گنوں کے پرنمن ایک ایک، وہ ایک ایک انت ہوئے کاری، تو انت کاری بھگوان آتما ایک ساتھ پرتی سمے انادی کال سے کر رہا ہے اور انت کال تک کرے گا، کبھی تھکے گا نہیں۔ जैसे हार्ट है ना 24 घंटा चलता है और एक सेकंड को भी बंद हुआ तो समझ लो मरे। एक समय को भी किसी गुण का प्रणमन खत्म हुआ तो समझ लो आत्मा ही खत्म हो जाएगा, वो होगा नहीं कभी। तो अनंत कार्य करता है प्रत्येक जो प्रति समय, पुद्गल भी ऐसा ही है, उसका जो रस गुण है वो खट्टा मीठा किसी ना किसी रूप प्रणमित होता है, गंध गुण है, अलग अलग गुण है ना, वो अनंत गुण सबके से उस पुद्गल के। तो ऐसा प्रत्येक द्रव्य प्रति समय अनंत कार्य करते हैं, तो एक समय को भी आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली। तो इतने काम करते हैं संडे की तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। एक समय को भी अनादि काल से अनंत काल तक कभी भी अब तो मुझे ये काम नहीं करना पड़े, क्यों? मैं पूछता हूं कि काम करना उसका, वो काम होना कहो तो करना कहो, करना और होने में क्या फर्क है भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो वो जो काम जो करे तो अनंत कार्य प्रति समय करे तो उसका जीवन, और एक समय भी वो काम बंद हो तो उसके मरण माने मौत, उसका अभाव हो जाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं, एक कल्पना में समझने के लिए। यानी वो एक समय भी उसका कार्य नहीं रुकेगा। तो बोलो प्रत्येक वस्तु द्रव्य आत्मा अनंत कार्य प्रति समय कर रहा है कि नहीं? अब थकान क्यों नहीं होती, आराम क्यों नहीं मिलता है? कि भाई साहब थकान तो बोझा से होती है, उसे कार्य करने का बोझा थोड़ी है। ये कार्य माने ये प्रणमन उसका सहज स्वभाव है, ये हो रहा है, इसलिए कहते करना नहीं है। क्यों? करने में वो थकान वाला जो पॉइंट जुड़ जाता है ना, इसलिए उसको होना कहते हैं। मजबूरी जुड़ जाती है ना, इसलिए उसका नाम है होना, करना नहीं। वास्तव में यदि कर्तृत्व गुण की अपेक्षा बात करें प्रणमन की, तो उसको करना ही बोलेंगे कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है और अपनी पर्याय अनंत है। एक ऐसी भी बात चलती है कि एक एक गुण की एक एक पर्याय, ज्ञान के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, तो ये तो गुण पर्याय है, और कहते सब अनंत गुणों की मिला दो और एक पर्याय कहो तो अनंत गुणों को मिलकर एक द्रव्य बनता है, तो अनंत गुण की मिला के जो एक पर्याय होगी उसका नाम हो जाएगा द्रव्य पर्याय। ख्याल नहीं है ना, हो गया ना, जब एक एक गुण की मिलाई तो गुण पर्याय कहलाई, तो सब गुणों की एक एक पर्याय मिला के और एक मिक्सर बनाओ और उसका नाम रखो एक पर्याय, तो उसे हम कह देंगे द्रव्य पर्याय। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्या तुम समझ रहे? क्या क्यों नहीं है सही? क्योंकि जब द्रव्य पर्याय का भेद किया आचार्यों ने, तो समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय ऐसे भेद किए, दो ही भेद है ना, क्यों समझ रहे ना? तो समान जाति द्रव्य पर्याय का मतलब समझते हैं क्या है? कि दो एक जाति के द्रव्य मिलकर जो पर्याय होती है उसका नाम समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे दो पुद्गल परमाणु मिले, स्कंद बना दी, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, ये समान। तो अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बनी ना, तो एक जाति के अनंत पुद्गल द्रव्य और उनकी ये पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय, और ये मैं पंडित हुकुमचंद ये मनुष्य ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्यों? कि एक तो चेतन जाति का द्रव्य आत्मा और बाकी के अचेतन जाति, और इन दोनों को तो असमान जाति कि मिलके जो मिली है मनुष्य पर्याय, तो इसको बोलते असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब वो जो तुम कह रहे हो सब गुणों की मिलके एक कह रहे हो, उसका क्या नाम है बताओ, कौन सी द्रव्य पर्याय है? आता ही नहीं, गिना ही नहीं। प्रदीप जी ख्याल में आई ना बात? तो ये वास्तव में इस द्रव्य पर्याय जिसका नाम कहा है, इसी को दूसरा नाम व्यंजन पर्याय भी है, और वो क्यों है वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इसको समझ लो। वो वास्तव में द्रव्य की पर्याय, एक द्रव्य की पर्याय नहीं है,
वो तो अनेक द्रव्य पर्याय है, एक द्रव्य की पर्याय तो गुण पर्याय ही कहलाती है, उसका नाम तो गुण ही पर्याय है। केवल ज्ञान, मति ज्ञान, ये सब गुण पर्याय है। वो आत्मा की बोलो तो सिद्ध पर्याय, समझे ना हमने, वो एक द्रव्य की है ना। आप सुनिए ना, आज ने वो ये तो जो बोला है तो ये तो इनके भेद तो ऐसे किए। वो इसका नाम व्यंजन पर्याय क्यों है कैलाश चंद जी? इंद्र पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय क्यों है? इसलिए है कि व्यंजन पर्याय की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। ये सब सुबह का विषय है कि पर्याय किसे कहते जो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। देखो क्या बात चल रही है, व्यंजन पर्याय किसे क्यों कहते हैं इसका नाम? इसी द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम है व्यंजन पर्याय। उसका नाम व्यंजन पर्याय क्यों है कमल जी? व्यंजन पर्याय की परिभाषा क्या पढ़ी थी आपने कि प्रदेश सत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि ये भी गुण पर्याय है, क्योंकि प्रदेश सत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो प्रदेश गुण का परिणमन हुआ ना, नहीं लगता है ये गुण पर्याय है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो द्रव्य पर्याय है और अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है। एक तो इसका नाम व्यंजन पर्याय क्यों, और दूसरा प्रदेश सत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, ये परिभाषा क्यों? इसमें सब एक एक में हेतु है, उसमें हेतु क्या है सुनो। व्यंजन बोलते हैं आकार को, तो इसमें आकार की मुख्यता है। मनुष्य आकार, इसमें वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ऐसे ज्ञान उसकी मुख्यता नहीं है, इसमें आकार की मुख्यता है, इसलिए तो इसका नाम है व्यंजन पर्याय। अब ये कहते हैं कि जो आत्मा किस आकार में रहता है कोई द्रव्य, तो कहते उसमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, उसके कारण ये अनेक आकार धारण करता है। तो देह प्रमाण आकार धारण करता है ना, तो इसकी वजह से उसे व्यंजन पर्याय को प्रदेशत्व गुण के विकार को कहते हैं। माने ये कि आत्मा का उसमें क्या योगदान है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण ने उस वो आकार धारण किया है प्रदेशत्व गुण के कारण, जो आकार मनुष्य में असमान जाति द्रव्यों ने मिलकर बनाया है। वास्तव में वो द्रव्य पर्याय है, व्यंजन पर्याय, ख्याल में ना। तो ये जो सारा जो मिथ्यात्व का डिपेंड है वो सब व्यंजन पर्याय पर डिपेंड है, माने द्रव्य पर्याय पर डिपेंड है। यानी मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, और ये समय साल में आया ना अन्य अन्य का बोल, तो आत्मा अनन्य है और आत्मा अन्य अन्य है, उसका क्या अर्थ है? तो कहते मैं मनुष्य हूं, मैं त्रिंश हूं, मैं नारकी हूं, ये है अन्य अन्य और अनन्य है, इन सब में एक जीव है, उसका नाम है अनन्य। तो ये जो अनन्य वाला बोल है वो व्यंजन पर्याय के निषेध का बोल है, वो भी पर्याय के निषेध का बोल है, लेकिन वो व्यंजन पर्याय के निषेध का बोल है। अन्य जी, और गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय भी है। अर्थ किसे कहते हैं? अथो खलु द्रव्यमयो, द्रव्य को द्रव्य, देखो फिर कहता हूं, पर्याय गुणों के प्रणमन को पर्याय कहते हैं, और गुण और पर्याय वाला हो वो द्रव्य कहलाता है। और अर्थ क्या कहलाता है? कि द्रव्य गुण पर्याय वाला जो हो उसे अर्थ कहते हैं। ये परिभाषा है प्रतिसार में, समझ में आया ना? कुछ नहीं आई होगी समझ में, दो तीन तो पढ़ी है आपने कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, क्यों? और गुण और पर्याय वाला बाण होता वो द्रव्य, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये भी पढ़ा है क्या? नहीं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया। आपको पढ़ा तो है कि द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों को मिलाओ तो उसका नाम होता अर्थ। कहां लिखा अतल जी? अथो खलु द्रव्यमयो, अर्थ क्या है कि जो द्रव्यमय हो, और द्रव्य क्या है कि गुण परज्ञानी भरियानी, जो गुण और पर्याय वाला हो। तो गुण और पर्याय वाला हुआ द्रव्य, और द्रव्य गुण और पर्याय तीनों हो गए, और ये तीनों को मिलाए तो उसको बोलते हैं अर्थ। तो उसको कहा गुण पर्याय को कहा अर्थ पर्याय, तो वो तो द्रव्य से भी बड़े होगी। अभी हम क्या समझते हैं गुण तो एक है, उसकी पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं, और द्रव्य तो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों के पिंड की द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय जरा बड़ी होती होगी और गुण पर्याय थोड़ी छोटी। अरे गुण पर्याय तो अर्थ पर्याय है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही शामिल है। समझ में आया नहीं? पढ़ना प्रतंसार पंचाशी का सब है उसमें। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम उसको के लिए गुण की पर्याय समझ रहे नहीं, वो अर्थ पर्याय है, वो द्रव्य की पर्याय भी है। एक एक दो द्रव्यों का मिक्सर नहीं किया, न समान जाती न असमान देती, तो वो सब अर्थ पर्याय है। चाहे वो द्रव्य की हो, चाहे वो गुण की हो, चाहे वो पर्याय की पर्याय हो, मैं समझ गए ना। वो उसका उसका पेटा इस तरह से बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दृष्टि के विषय में कौन सी पर्याय नहीं है, वो मुख्यता इसकी है, नंबर वन पे ये है। कौन सी? जिसे आसमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। अटोर रमल जी ने तो कदम कदम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा, और समय सार में भी तो आता ही है, और जो वो है ना सम्यक ज्ञान चंद्र का, तो उसमें जो उन्होंने प्रशस्ति लिखी और उसमें जो अपना परिचय दिया, और उस परिचय में भी ये बात उन्होंने लिखी। क्या लिखी उन्होंने? क्या? मैं हूं, मैं आत्म अरूप उद्गल खंड, मिलकी भयो परस पर बंध। मैं तो एक आत्मा हूं, और ये पुद्गल का स्कंध है, ये अपन ने इसमें पढ़ा था ना, और इनके मिलके भया परस्पर बंध, ये मिलके एक पिंड बन गया है ना। सो असमान जाति पर्याय, उसको शास्त्रीय भाषा में असमान जाति पर्याय कहते हैं। अब क्या कहते हैं? और उसको शास्त्रीय भाषा में तो असमान जाति पर्याय कहते हैं, और ये जगत उसे टोडर मल्ल कहता है। सुअसमान जाति पर आए उपजो टोडर, वह असमान जाति पर्याय जो है वो मानुष पर्याय है, और सारे लोग ने क्या कहते हैं, सारे कुटुंब तब कुटुंब को मेलो भयो, क्या है ताम नाम धरो तिन हर्षित होए, टोडर मल्ल कहे सब कोई। बस उनने मन में लाकर के इसका नाम टोडर मल्ल रख दिया। मैं काय को टोडर फोटा मरू? मैं नहीं, इसमें मैं तो एक आत्म हूं, इस पूरी पार्टी में मैं एक आत्मा हूं, और ये सारे जगत ने इसको टोडर मल्ल कह दिया, तो मैं टोडर मल्ल नहीं हूं। वो टोडर मल्ल जिसको जगत ने कहा, उसमें मेरा हिस्सा क्या है? वो अकेला आत्मा वाला मेरा हिस्सा है। और फिर क्या लिखा है? उसमें आगे ये लिखा है कि मैं धीरे धीरे बढ़त भयो निज काल गमाए, कि मैंने बढ़ा तो बढ़ा, बढ़ने माने क्या? तरक्की करी मैंने, तो छोटे बड़ा हो गया बूढ़ा, माने बढ़ा माने काल को गमाया। बढ़त भयो तिन काल गमाए, बढ़ने का अर्थ है काल को गमाना। देखो यहां पेज नंबर देख लो, 22 है। क्या है? मैं आत्म अरूप उद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहाय। मात गर्भ में सो पर्याय, कौन? जिसे मनुष्य कहते हैं वो असमान जाति द्रव पर्याय। करके पूरण अंग सुभाए, पूर्ण हुई गर्भ में, और बाहर निकसी प्रकट जब भयो तब कुटुंब को भेलो भयो, ये कुटुंबी लोग इकट्ठे हो गए। नाम धरो तिन हर्षित होए, टोड़ मल्ल कहे सब कोए, ऐसो यह मानुष पर्याय बधत भयो निज काल गमाए। बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मैंने कई वर्ष का हो गया, दस वर्ष का, मैंने दस वर्ष का काल इसने मुफ्त में गमा दिया, मैंने तरक्की काल का नाम है, काल गमाने का नाम तरक्की है। वो लक्ष्मण ने भी ऐसा कहा था कि जब वहां वो बैठा था ना सीता और राम की पंचवटी में ड्यूटी दे रहा था, वे सो रहे थे आराम से, वो जी दरवाजे में बैठे बैठे चौकीदारी कर रहा था, तो उसको सोचता है तो मैथिली सेन गुप्त के शब्दों में वो दो बातें कहता है कि भाई क्या है, यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। कि उन्नति माने क्या, तरक्की माने क्या, प्रोग्रेस माने क्या, हमें तरक्की करो, तरक्की करो, उन्नति करो, हमने बहुत उन्नति की, तुमने बहुत उन्नति की, क्यों तो तरक्की किसे कहते हैं, वो खुद परिभाषा बनाता है कि परिवर्तन का नाम तरक्की है। वो ऐसा यदि बदलने का नाम तरक्की है, क्योंकि बहुत बदल गए तुम, कहां साधारण से आदमी थे, कहां एक मास्टर के लड़के, कहां प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाप आठवीं क्लास में पढ़ाते थे, एक स्कूल में मिडिल स्कूल में अध्यापक थे, बड़ी बड़ी तरक्की की। तरक्की क्या की, मैंने परिवर्तन हुआ ना, बहुत बदल गए, तो परिवर्तन का नाम ही तरक्की है ना, तो हम तो तरक्की कर रहे। क्या मतलब कि हम राज छोड़ के जंगल में आ गए, माने हम राजा से भिखारी बन गए, तो परिवर्तन तो हुआ ना, तो अवनति है कि उन्नति। यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं, हम एक वर्ष बढ़ गए ना, 25 वर्ष से 26 वर्ष के हो गए ना, क्यों भाई, यदि बदलने का नाम ही तरक्की है, वो कह रहा है तो हर आदमी निरंतर बदल ही रहा है। तो रमन जी जरा और आगे कह रहे इसी बात को कि बढ़ने का मतलब है काल गंवाना। बोलो अभय कुमार जी कितने वर्ष की उम्र हो गई आपकी, 58, बस 58 वर्ष ही गंवाए, हम आपसे आगे हैं, हम 65 गंवा चुके हैं। बदत भयो निज काल गमाए, देखो है ना, और देखो अब देखे आगे मरम की बात, इस पर्याय दिशें जो कोई, वो जो आसमान जाति पर्याय है, देखन जानन हारो सोए, अब उसमें जो देखने जानने वाला तत्व है, ये काला गोरा तत्व नहीं, समझे ना, ये बोलने वाला तत्व नहीं, ये भाषण देने वाला तत्व नहीं है, प्रवचन करने वाला तत्व नहीं, ये टोपी वाला नहीं, देखन जानने वाला जो है इसमें, इस पिंड के अंदर, मैं हूं जीव द्रव्य गुण, वो मैं हूं वो देखने जानने वाला हूं, और उसका नाम है जीव द्रव्य, टोटे मल्ल नहीं है उसका नाम, और वो गुणों का राजा है। मैं हूं जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत अनूप, अनादि अनंत काल की अखंडता रख ली, एक भाव की अखंडता आ गई। एक अनादि अनंत अनूप, अरूप अरूपी हूं, कर्म उदय को कारण पाए और रागादिक होए हैं दुखदाय, ते मेरे औपादिक भाव और इनको विनसे में शिविराय। और एक बात वहां जो अपन पढ़ रहे थे ना कि उसमें आत्मा में जो रागादिक भाव पैदा होते हैं वे तो विकारी भाव है, आश्रव भाव है, और वे और जो ज्ञान भाव पैदा होते हैं वो निर्मल भाव है, वो आत्मा का स्वभाव है, तो उन आत्मा के स्वभाव को, इन विभावों को हम दोनों को एक जानते हैं, ये आश्रव तत्व की भूल है। अपन पेज नंबर कितना, 81-82 था ना, कितना, हाँ 82 पेज नंबर था ना, देखो ज्ञान दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव, उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधार भूत एक आत्मा, दोनों ही आत्मा में पैदा हुआ, इस आधार पर दोनों को एक मान लेता है, दोनों ही आत्मा की पर्याय है, दोनों ही आत्मा में पैदा हुए, इस आधार पर दोनों को एक मान लेता है। इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए और एक मानने का इसको हेतु मिल जाता, दोनों एक साथ पैदा। ये जो बात अपन ने यहां एक ही काल में होता है ना, इसके लिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि अनंत गुण है, एक ही द्रव्य का ये परिणमन हो रहा है तो अनंत कार्य हो गए। तो आत्मा ने एक ही समय में वो राग भी पैदा किया और उसी समय में ज्ञान भी पैदा किया, तो दो कार्य एक साथ कर सकता है आत्मा, ऐसा नहीं कर सकता, अनंत कर सकता है। जो हमारे दिमाग में घुस गया ना कि एक समय में एक ही कार्य, एक समय में एक ही कार्य, एक समय में एक ही कार्य, ऐसा नहीं है, एक समय में एक ही जन्म, एक समय में एक ही काम, ये घुस गया ये नहीं है। देखो अनंत कार्य एक साथ निकलते हैं, गुस्सा भी आता कि नहीं आता। देखो मैं बताता हूं, क्रोध और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे रहते हैं, और हम देखे तो क्रोध तो अंधा होता है, ज्ञान में सब भूल जाता है, जब गुस्सा आता है, जब ज्ञान आता है तो गुस्सा गायब हो जाता है। अभी अपन ने ये पढ़ा है, अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि किसी को गुस्सा आया और उसने उठाकर पत्थर से मारने के लिए दौड़ा, क्या गुस्से में आग बबूला हो गया, उसे पत्थर से मारने के लिए दौड़ा, इतने में कोई आदमी बीच में आ गया, अरे क्या करता है, नहीं नहीं पत्थर नहीं मारना, तो वो हाथ पकड़ कहता है तू हट जा नहीं तो तेरे को लग जाएगी, तो उसे मारना है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस वक्त गुस्सा आ रहा है वो मार रहा है पत्थर, उस वक्त ज्ञान गायब हुआ, ज्ञान है कि नहीं है, उसे यह है कि इसे मारना है इसे नहीं मारना है, उससे तू हट जा तुझे न लग जाए, बोलो ज्ञान कायम है कि नहीं, और उसी वक्त क्रोध भी कायम है। यदि वो ज्ञान होते, ज्ञान कायम है और क्रोध उससे भगता होता तो वो गुस्सा नहीं रहना चाहिए था, और गुस्सा भी कायम है और क्रोध भी कायम है, क्रोध भी कायम है और ज्ञान भी कायम है, क्यों नहीं होगा, वो ज्ञान ज्ञान गुण से हो रहा है, क्रोध चात गुण में हो रहा है प्रणम, और अनंत गुण है और अनंत गुण का अधिष्ठाता आत्मा एक है अभेद रूप से, तो दोनों का कर्ता आत्मा है। अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात छोड़ देना कि वो ज्ञानी करता है कि अज्ञानी करता है कि नहीं, वो बात नहीं है, वो तो समय सार की उस दूसरा प्रकरण की बात है, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये है कि अपने जो पर्याय है उसका कर्ता जी, यह परिणमति सा कर्ता, बस ये नियम लगाना है, यह परिणमति ये भी समय सार का कलश है, यह परिणमति सा कर्ता यत परिणामम भवेत तत् कर्म, यह परिणति क्रिया सा उत्तृतयो अभिन्नतया। क्या कहते हैं देखो क्या लिखा समय सार के उसमें, कि ये जो जो परिणमित होता है वो करता है, जो परिणमन है वो कार्य है, जो परिणति है वो क्रिया है, और ये तीनों निश्चय से अभिन्न है, व्यवहार से अभिन्न नहीं है, ये तीनों निश्चय से अभिन्न है। अब राग के परिणमन में भी यही लगेगा कि राग के परिणमन का कर्ता मैं हूं। अब यहां वो क्या कह रहे हैं कि चूंकि ये तो विकार भाव है और वो स्वभाव भाव है, तो विकार से भगवान आत्मा भिन्न है और स्वभाव से भिन्न नहीं है। जो अचल जी आज सुबह के प्रवचन में बता रहे थे ना, 5 बजे चलित लेते ना, 5 बजे से 5:30 बजे, वो स्वभाव मात्रम के लिए वस्तु, कि वस्तु तो स्वभाव मात्र को कहते हैं, विभाव को वस्तु कहते ही नहीं, और ज्ञान से भवनम ही आत्मा, और ज्ञान का होना वो आत्मा है, वो वस्तु है, तो राग तो आया नहीं ना उसमें, वो तो विभाव है। तो कहते ये जो विभाव है वो मैं नहीं हूं और स्वभाव है वो मैं हूं, ये भेद विज्ञान नहीं है उसे अनादिकाल से, इसलिए जो अघीत मिथ्यात्व है, ये किसी कुगुरु ने नहीं समझाया है। यदि कुगुरु के समझा करके ये बात होती, समझ में आए ना आपके में, तो वो गृहित में चली जाती। देखो मैंने बोला कि भाई आपने भाई इसकी जरूरत है अन्ना जी को, इसके लिए 11,000 रुपये मेरे लिख लो, और फिर और ने कहा तो सबने 1100 लिखवाए, मेरी बराबरी बारे के थे सबने 1100 लिखवाए, तो उसी वक्त मेरे मन में आ गया अपन गलती कर गया, 10,000 में समझ गया अपन 1100 लिखा दे तो अभी चलता था, एक सेकंड में ये कौन से कुकुरु ने भड़काया, कौन से सास पढ़ करके गुस्सा ये बात लोभ आया, तो ये लोभ अंदर से ही आया है, ये अग्रित है। समझ में ना, ये जो तुम्हारा भाव बदला वो अग्रित हुआ, और अब के बाद में बाहर निकले, अब तुम्हें अकल तो है नहीं, क्या जरूरत थी 11,000 की, 1100 बोलते तो ही काम चलते। तब अकल आई, क्या गलती की, अब दूंगा तो मैं, तो ये ग्रीत हो गया। समझ आए ना, बात एक ही है, वो कब अग्रीत होगी और कब ग्रीत हो जाएगी, जब उसमें पर का निमित्त मुख होगा तो वो ग्रीत हो जाएगी, और पर का निमित्त मुख नहीं हुआ तो अग्रीत हो जाएगी। जो अनादिकालीन रागादिक में एकत्व बुद्धि है वो अग्रीत में दात है, आसक्त तत्व संबंधी भूल है। और जो गुरुओं ने समझाई है कि राग सो आत्मा ही है, प्रेम तो करनी चाहिए, ऐसा ही है, वो तो अपना आत्मा का कर्तव्य है, और उससे हमने उस राग को धर्म माना तो वो गीत में ठप हो जाएगा। यानी गीत और गीत का बारीक भेद करना है ना, है तो वही दो आश्रव, तो वही है रागादिक भाव, और उनको धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। अब इनमें गीत और गीत का भेद करना है, और वो गीत है वो अग्रीत है, कुछ दो तो है नहीं। तो उसमें जो कुगुल कुलेप कुशासन निमित्त हो और जो हमारी नई बुद्धि पूर्वक हमने स्वीकार किया हो तो वो ग्रीत है, और सहज परिणति से वो जैसे लोभ की वृत्ति आदमी में सहज ही होती है, वो सब अग्रीत है, वो अनादिकाल से, वो एक इंद्री में भी होती, दो इंद्री में भी होती, तीन इंद्री में भी होती, चार इंद्री में भी होती। बस ये समझ जो पड़ोसी भड़काए भड़काए वाली भड़कने वाली समझ तो सेनी पंचेंद्री में आती है, जब तक सेनी नहीं है हुआ है तब तक न समझाने से समझता है और न भड़काने से भड़कता है। ऐसा नहीं समझना है सैनी पंचेंद्री हो गए तुमने बहुत बड़ा तीर मान लिया है, वो भड़काने वाले हो गीत में था तो बोलते हैं बस, और समझाने वाले भड़काने वाले में क्या फर्क है, क्यों होशियारी में वो बदमाशी में कितना अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। बुद्धि तो दोनों में चाहिए, चालाकी तो दोनों में चाहिए, क्लेवरनेस तो दोनों में चाहिए, लेकिन वो बुरे काम में लगे वो क्लेवरनेस तो उसको बदमाशी कहते हैं, और वही अच्छे काम में लगे तो उसे होशियारी कहते हैं। होशियारी और बदमाशी में ज्यादा फर्क नहीं है बुद्धि का, जिसमें बुद्धि नहीं है ना वो होशियारी से कोई काम कर सकता है ना बदमाशी कर सकता है। वो बदमाश भी बुद्धिमान है और होशियार भी बुद्धिमान है, मूर्ख के बस की ना बुद्धिमानी है ना बदमाशी है, ना होशियारी है ना बदमाशी है, कुछ बस की नहीं है उसके ख्याल में आई ना, बस उसमें वो कैसे काम में लगा उसका फर्क है, ख्याल में आया ना। तो जब तक सैनी पंचेंद्री नहीं हुआ तो तब तक किसी के समझाने से समझता नहीं है, ये कमी है, तो ये फायदा भी है क्योंकि भड़काने से भड़कता भी नहीं है। क्यों, एक गाय भैंस को एक सुविधा है, शेर को एक सुविधा है कि वो हमारे समझाने से समझता नहीं है तो कोई कुगुरु से भड़का भी नहीं सकता है, तो फायदा ज्यादा है, क्योंकि समझाने वाले तो बहुत कम है और भड़काने वाले बहुत ज्यादा है। वो अपनी बुद्धि की कमजोरी से खोटे निमित्तों से बचा हुआ है, तो भड़काने वाले भी भड़क नहीं था, तो किसी को कोई उसको नहीं विरुद्ध हमारे विरुद्ध नहीं कर सकता, कोई जाके उसे समझा दे कि तेरा शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो सहज वृत्ति है, जैसे सहज लोभ है ना अनादि, कैसे जैसे सहज क्रोध है अनादि से, ऐसे ही सहज मिथ्यात्व माने पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि भी वैसे ही सहज है। इस सहजता का नाम है अग्रीत मिथ्यात्व। और हम तो सहज शब्द को अकेला उसमें ही लगाते हैं अनुभव में ही, और वो शब्द सहज 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 शब्द तो अच्छा लगता है, सहजानंद, अरे सहज इसमें भी सहजता है, विषय कषाय में भी सहजता है। जो चींटी है ना तो चीनी की तरफ अपने आप जाती है कि कैसे सहज ही जाती है, उसमें क्या है, किसी ने उसे सिखा दिया है, ट्रेनिंग दे दी है, इसलिए वो जाती है, ऐसा नहीं है। पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति और चार कषायों की प्रवृत्ति अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि के सहज ही होती है। देखो अकेला ज्ञानी सहज नहीं होता है, इस कषायों की प्रवृत्ति भी उसके सहज है और ज्ञान भी सहज है। अरे वो कहते हैं कि दोनों चूंकि एक ही आत्मा में पैदा होती है, इसलिए जो आत्मा दोनों में एक सी एकत्व बुद्धि कर लेता है, ये इसका अग्रीत आश्रव तत्व संबंधी भूल है।